તારીખ 4/2/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 438 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 538
સ્વરૂપ છે એવું સ્વીકારે ચાલી ગયું. હું વેદકતા નામનો ગુણ છે આત્માનો, વેદકતા લક્ષણ છે આત્માનું, અને એને દ્રષ્ટાંત આપે છે કે આ મોળું છે, આ મીઠું છે, આ ખાટું છે, આ ખારું છે. સ્વાદનો દ્રષ્ટાંત પહેલાં લીધો છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં એક જીભ છે એ સ્વાદનો અનુભવ કરે છે, એ સિવાય સ્વાદનો અનુભવ ન થાય. જીભ સિવાય બાકીના ચાર ઇન્દ્રિયથી સ્વાદનો અનુભવ નથી થતો. એટલે જે ખાદ્ય પદાર્થો છે અથવા સ્વાદ લેવા યોગ્ય પદાર્થો છે એ જીભ દ્વારા અનુભવ ગોચર થાય છે વ્યવહારિકપણે. જીભ દ્વારા અનુભવ ગોચર થાય છે અને વેદન જ્ઞાન છે એ પણ અનુભવ જ્ઞાન છે. જેમ કે જુદું પાડીએ આપણે ખુરશી પર બેસીએ ત્યાં ત્યાં બેમાં ફરક શું છે કે આંખ છે જુએ છે તો એમાં બીજો અનુભવ નથી, ખાલી દ્રશ્ય પદાર્થને હિન્દીને હજી બી આપણા પ્રેક્ટિસ નહીં માને. આંખ એવો દેખતી હૈ, દેખને મેં કોઈ અનુભવ નહીં હોતા હૈ. દેખ લીયા કોઈ સીધી પદાર્થ કો બિના મતલબ કે ભાઈ પદાર્થ દિખને મેં આતા હૈ, મતલબ વાલે ભી દિખને મેં આતા હૈ. મતલબ વાલે દિખને મેં આતા હૈ તો રાગદ્વેષ હોતા હૈ, બિના મતલબ વાલે દિખને મેં આતા હૈ. જૈસે પેડ દિખ રહા હૈ, ઇધર નજર ગઈ તો પેડ દિખ રહા હૈ, રાગદ્વેષ કા કારણ નહીં. દેખા અનદેખા હો જાતા હૈ, એ કોઈ અનુભવ કા ઉસમે કુછ અનુભવ નહીં હો રહા હૈ. જબકે જીભ પર કોઈ ભી પદાર્થ આયેગા ઉસકા સ્વાદ કા અનુભવ હોગા. इसलिए दृष्टांत में वो चीज ली जाती है. एक स्पर्श और एक रस दोनों का अनुभव होता है, दूसरे में जानने का होता है, गंध में जानने का होता है, शब्द में जानने का होता है. जब ये दोनों में अनुभव होता है कि ये फीका है, मीठा है, खट्टा है, खारा है, और मैं ये स्थिति में हूं, ठंड लगती है, ताढ़े ठरू छू, गुजराती में एटलो शब्द है, ठंड से मुझे और लगता है ज्यादा, तो स्पर्श का लिया. दूसरा दृष्टांत स्पर्श का लिया है क्योंकि दोनों अनुभव का कारण है. તાપ પડતા હૈ મને, ધૂપ લગતી હૈ. ઓર દૂસરા જો મન સે અનુભવ હોતા હૈ ઉસમે સુખ દુઃખ કા વેદન હોતા હૈ. बाहर में सभी प्रकार की अनुकूलता होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी भी होता है, होता है कि नहीं होता है? ये मन का कारण है। तो बाहर तो सब अनुकूलताएं हैं, तबीयत अच्छी है, अनुकूलता के सब साधन है, खाना पीना रहना पहनना सब कुछ है, फिर भी कुछ न कुछ मन के परिणामों से जीव दुखी भी होता है। और कुछ अनुकूलता नहीं हो फिर भी ये मुनिराज देखो ना सुखी होते हैं। एगंत सुहि मुनि वितरागी, जगत में कोई सुखी है तो वितरागी मुनि होते हैं। कोई साधन नहीं, कोई परिग्रह नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा सुखी होते हैं वो होते हैं, क्योंकि सुख अंतर में से वो प्राप्त करते हैं। यहाँ तो मन का दृष्टांत लिया है, यहाँ आत्मा का सुख की बात नहीं चली है, अब तो दृष्टांत में तो मन की बात सब चली है कि मैं दुखी हूं, दुख का अनुभव करता हूं। ऐसा जो स्पष्ट ज्ञान, सुख की बात नहीं दिया दृष्टांत में, क्यों? इस जगत के प्राणी दुखी दुखी है, उपाधि से घिरे हुए हैं, अनेक प्रकार के उपाधि से घिरे हुए हैं, भविष्य की भी चिंता से घिरे हुए हैं, वर्तमान संयोग की किसी को प्राप्त करने की चिंता है, किसी को प्राप्त हुए संयोग को जताने की चिंता है, किसी को प्राप्त संयोग को बढ़ाने की चिंता है, वर्तमान में भी चिंतित है, भविष्य में भी, भविष्य के लिए भी चिंतित है, और अनेक प्रकार के भय से भी ग्रसित है, वो भी दुख है। मृत्यु का भय तो बहुत सताता है, और भी अनेक प्रकार का भय है, अकस्मात का भय है, रोग का भय है, चोरी का भय है, लूट का भय है, सभी प्रकार के भय से ग्रसित है। उपयोग भले किसी एक भय में कभी जाए कभी नहीं जाए, लेकिन सातों भयों की परिणति तो चालू है, सब जीव को ग्रसित है ही। इसलिए जगत के प्राणी मानसिक दुख हमेशा हमेशा अनुभव कर रहा है। बाहर में कितनी भी शाता हो लेकिन मानसिक अशांता बहुत है, और ये सबसे ज्यादा दुखदायक है। क्यों? कि भाई साता को भी ओवरटेक करती है, कर लेती है। कुछ अच्छे अच्छे संपन्न लोग भी खुदकुशी क्यों करते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं? मानसिक दुख के कारण। और मानसिक दुख उतना बढ़ जाता है, उतना बढ़ जाता है कि मृत्यु से भी उसको प्रिय करता है, वो मृत्यु को भी वो प्रिय करता है। तो मृत्यु से भी वो अधिक हो गया कि नहीं हो गया? सभी प्राणियों को मृत्यु तो दुखदायक है ही, लेकिन मानसिक दुख बढ़ता है तो मृत्यु का दुख कम लगता है उसको, मृत्यु प्रिय लगता है कि मर जाए वो अच्छा है। ऐसी स्थिति में रहने के बजाय तो मर जाना अच्छा है, और मरते भी है। इसलिए दृष्टांत में दुखी का दृष्टांत लिया है, सुखी में ऐसा दृष्टांत नहीं लिया है, क्योंकि संसार में कोई सुखी ज्ञानी की नजर में है ही नहीं। लौकिक नजर में संपन्न लोगों को सुखी माना गया है, लोक दृष्टि में वो बात है, ज्ञानी की दृष्टि में वो बात नहीं है। ज्ञानी तो वही दिखते हैं कि अगला कितना उपाधि से उपाधि करता है, उतना वो ज्यादा दुखी है। जितनी उपाधि ज्यादा करता है उतना ज्यादा दुखी है। और निरुपाधिक तो ज्ञान दृष्टि से ही हुआ जाता है, उपाधि का अभाव तो ज्ञान दृष्टि से ही हो सकते हैं। कुछ लोग को कम उपाधि होती है, कुछ लोग को ज्यादा होती है, वो बात जरूर है, लेकिन है उपाधि, उपाधि तो उपाधि ही है, पर भय से तो ग्रसित है ही सब। इसलिए जगत के सर्व प्राणी ज्ञानी की नजर में तो दुखी ही दुखी है। ऐसा जो स्पष्ट ज्ञान, ये उल्टा वेदन का दृष्टांत दिया है सुल्टा वेदन समझाने के लिए। वेदन दोनों में सामान्य है, कॉमन फैक्टर। वेदन चाहे उल्टा हो, वेदन चाहे सुल्टा हो, लेकिन वेदन तो वेदन है ना, समझाना है वेदन को। जैसे हमारा श्रद्धा का परिणमन सूक्ष्म है, लेकिन गृहित मिथ्यात्व से समझाया जाता है, क्योंकि वो स्थूल श्रद्धा है कि देखो ये अंबा जी को मानता है, ये पार्श्वनाथ को मानता है, ये हनुमान जी को मानता है, तो उसकी जो मान्यता है उसमें उनको श्रद्धा है। ज्ञान गुण से विश्वास कहते हैं, लेकिन श्रद्धा गुण से श्रद्धा कहते हैं। उसको श्रद्धा है कि ये मेरे सुख के कारण है, ये मुझे सुख देते हैं, वो मुझे सुख देंगे। तो उल्टी श्रद्धा में श्रद्धा तो है ना, सुल्टी श्रद्धा में भी श्रद्धा है, उल्टी श्रद्धा में भी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा को समझना है तो उसका कॉमन फैक्टर को पकड़ लो, श्रद्धा समझ में आ जाएगी अपने अनुभव से कि श्रद्धा क्या चीज होती है। बात इसलिए वो स्पष्ट करते हैं कि सामान्य जो है, परिणमन का जो सामान्य है, ये गुण अनुसार है, और जो गुण है, श्रद्धा गुण है, सुख गुण है, वेदन करने वाला ज्ञान गुण है, वो गुण है, वो शक्ति रूप है। और यहां से शक्ति का स्वरूप, सामर्थ्य का स्वरूप समझ में आ सकता है। और इस तरह से सामर्थ्यवान आत्मा जो द्रव पदार्थ है उसका भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए ज्ञान होता है पर्याय से, पर्याय ही गुण द्रव्य का ज्ञान करने में साधन है। ये द्रव गुण पर्याय है, ये पदार्थ की वैज्ञानिक परिस्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि द्रव गुण पर्याय, कोई भी पदार्थ का, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, तो उसका बंधारण क्या है, किससे बंधा हुआ है कि द्रव गुण पर्याय से। कैसे समझे कि पर्याय से गुण समझे, गुण से गुणवान को समझे। इस तरह से जैन दर्शन का, तत्व ज्ञान का जो बेस है वो विज्ञान है, और उपदेश भी विज्ञान आधारित है। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में उतना फर्क है कि अन्य दर्शन में जो उपदेश है वो न्याय आधारित है, सिर्फ उन लोगों के पास अकेला न्याय है, लॉजिक जिसको बोलते हैं, और लॉजिक से उपदेश देते हैं। जबकि जैन दर्शन में न्याय तो है ही, और सर्वोपरि न्याय है, न्याय में भी जैन दर्शन सर्वोपरि है, उतना न्याय किसी के पास नहीं है। न्याय के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है हमारे यहाँ, प्रमेय कमल मार्तेंड करके ऐसे बड़े बड़े अष्ट सहस्त्री वगैरह बहुत न्याय के ग्रंथ है। और न्याय के अलावा उपदेश को ठोस समझाने के लिए हमारे यहाँ गणित है, गणितानुयोग जिसको करणानुयोग कहते हैं, कि जिससे एक प्लस एक दो ही होता है, पौने दो भी नहीं होगा, सवा दो भी नहीं होगा, और एक में से एक ले लो तो शून्य हो जाएगा। ये जो गणित है वो करणानुयोग भी है हमारे यहाँ, और इससे ज्यादा ठोस कोई बात है तो वो विज्ञान की है, साइंस की है, वो गणित से भी ज्यादा ठोस है। पदार्थ विज्ञान, कोई भी पदार्थ अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव को धारण करते हुए रहता है, ये पदार्थ विज्ञान किसी भी धर्म में नहीं है। भौतिक विज्ञान में है वो भी बहुत मर्यादित है, बहुत लिमिटेड है। जैन दर्शन जितना गहरा विषय कहीं भी नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों से जो उपदेश को ग्रहण करता है उसकी मजबूती बहुत होती है, बलवान होता है उपदेश, वो उपदेश में टिक सकता है। वरना उपदेश प्राप्त होना एक बात है, टिकना दूसरी बात होती है, च्युत हो जाते हैं। उपदेश ग्रहण करके भी इसकी असर छूट जाती है, अकेला न्याय काम नहीं करता, चारों पड़खों से, न्याय से, गणित से, विज्ञान से, चारों पड़खों से अगर उपदेश ग्रहण कर लिया हो वो उपदेश से च्युत नहीं होगा। ऐसा है, देखो आत्मा जो है ये स्वयं बोध स्वरूप है, गुण भंडार है ना, तो स्वयं तो बोध स्वरूप है। जागृति माने क्या, इनका जो प्रश्न है उनको एलोबरेट करते हैं कि जागृति माने क्या, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा गुणवान पदार्थ हूं, ऐसा जो भान रहना, उसी का नाम जागृति है। उस जागृति में किसी भी प्रकार का दुखदायक उदय हो, उस उदय को आत्मा जीत सकता है अपने स्वरूप के अवलंबन के आधार से जीत सकता है। और ऐसे जीतने वाले को ही जैन नाम से पुकारा गया है। ये जैन नाम है वो ज्ञातिवाचक नहीं है, समाजवाचक नहीं है, संप्रदायवाचक नहीं है, किंतु ये गुणवाचक है। हम तो शुरू से ही कहते थे अजैन में से आए ना, इसलिए कि जैन पैदा नहीं होता, किसी माँ के पेट से जैसे साधु पैदा नहीं होता, साधु होना पड़ता है, वैसे जैन होना पड़ता है, जैन पैदा नहीं होता। कोई वो ज्ञान दशा लेकर आते हैं, वो बात हमारी समझ में नहीं थी उस वक्त कि तीर्थंकर आदि ज्ञान दशा लेके आते हैं, वो बात तो उस वक्त तो समझ में नहीं थी, जब प्रवेश काल की बात है। तो हम ऐसा ही बोलते थे, ऐसा ही सोचते थे कि जैन होना पड़ता है, जैन पैदा नहीं होता। क्योंकि जो जीतता है वो जैन है और जो हारता है वो अजैन है, बस तो गुणवाचक है, जीतने वाले को जैन बोला है। थोड़न मूल जी ने गोमठ सार की टीका की है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका करके टीका का नाम है। इस टीका का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका रखा है। उसमें एक जगह ऐसा बोला रखा है कि जब कोई मुमुक्षु करण लब्धि में आता है, करण लब्धि माने क्या, कि सम्यक दर्शन पाने के पहले की कुछ पूर्व क्षण होती है और उसका परिणमन उतना सूक्ष्म होता है, विशुद्ध परिणमन होता है। उसमें तीन करण है, बात तो कुछ सेकंडों की है, कुछ सेकंडों में तीन करण होता है। उसमें एक नाम है अपूर्व करण, अधकरण, अपूर्व करण, ऐसे करके तीन नाम है। अपूर्व करण के परिणाम होते हैं तब उसको जीन बोला है। क्या नाम दिया उसको? जीन बोला है। तो उसने खुद ने प्रश्न उठाया कि अब तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, ज्ञान दशा की प्राप्ति हुई नहीं, आपने जीन कैसे बोला? जैन नहीं बोला, जीन बोला है उसको। तो फिर सम्यक प्रकार से मैंने आत्मा भी मुख हो करके उसने अपनी प्रकृति पे विजय पाया है, विषय कषाय पे विजय पा लिया है, जीत लिया है, इसलिए उसको हम जैन जीन कहते हैं। इस कारण से जीन कहते हैं। तो फिर ज्ञानी तो जीन है ही, अपूर्व करण वाले को जीन बोला तो ज्ञानी तो जीन है ही, तो इसलिए ज्ञानी को परमात्मा के रूप में देखने में आता है। ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि ही मुमुक्षु का परम धर्म है। ये बात लिया 254 पत्र में, ये वचनामृत है 254 पत्र में। देखो नेवासी पेज है 289। तीसरा परिव, सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। मुमुक्षु को परमेश्वर बुद्धि आती है, उनको मनुष्य रूप में नहीं दिखाई देता है। मनुष्याकृति होने के बावजूद भी मनुष्य रूप में वो नहीं दिखाई देता, परमेश्वर के रूप में दिखाई देता है। इसलिए तो 223 में कहा कि ज्ञानी रूप जो परमात्मा है, देहधारी दिव्य मूर्ति, कैसा शब्द प्रयोग किया है, देहधारी दिव्य मूर्ति, इस रूप में वो मुमुक्षु उसको जब देखता है तब उनके ज्ञानी का जो बोध है वो अंगीकार होता है, उसका परिणमन हो जाता है, अंतर में उतर जाता है, वरना बोध बाहर रहता है, ऊपर ऊपर रहता है तो उसकी असर छूट जाती है, और जो बोध अंतर में उतरता है वो कभी जाता नहीं, वो परमानेंट स्थायी स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो यहां कहा कि जीव अनेक प्रकार का संसारिक संसार में अनुभव करता है, ऐसा एक स्पष्ट ज्ञान है, उसको कहते हैं वेदन ज्ञान। उनको क्या कहते हैं? वेदन ज्ञान। ज्ञान दो तरह का, एक जानने रूप ज्ञान और एक वेदन करने रूप ज्ञान, अनुभव करने रूप ज्ञान। जीव की संसार में भूल भी दो प्रकार की हुई है, एक समझ की भी भूल हुई है और एक अनुभव की भी भूल हुई है। गैर समझ है वो समझ की भूल है, गैर समझ सही समझ से दूर हो जाती है, इसका वो इलाज है। समझ का इलाज समझ है, उल्टी समझ है वो सूती समझ से छूट जाती है, मिट जाती है। और उल्टा अनुभव ज्ञान वो सुलटा अनुभव ज्ञान से सलटता है, वो समझ से नहीं सलटता है। ठीक है, क्या हमारी सही समझ हुई? हम सब मनुष्य जानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य का आयुष्य पूरा होता है तो उसके आत्मा देह में से कहीं और जगह चली जाती है और देह का अंतिम संस्कार करके बात खत्म करने में आती है। तो देह और आत्मा अलग अलग है वो तो सब जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है, वो तो ये तो मुसलमान भी जानता है, क्रिश्चियन भी जानता है, हिंदू भी जानता है और जैन भी जानता है, कौन नहीं जानता है? देह और आत्मा भिन्न भिन्न है वो सब जानते हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि किसी की छूटती है कि किसी की तो छूटती नहीं ना। देहात्म बुद्धि तो उतनी की उतनी रहती है। तो देहात्म बुद्धि के लिए समझ वाला ज्ञान पूर्ता नहीं है, सफिशियंट नहीं है, इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त अपर्याप्त है ना, शास्त्रीय परिभाषा है, इसलिए हम थोड़ा चालू भाषा में बात करते हैं। तो उसके लिए अनुभव ज्ञान चाहिए। देहात्म बुद्धि छूटने के लिए समझ वाला ज्ञान है वो पूर्ता नहीं है, अपूर्ता है, उसके लिए अनुभव ज्ञान चाहिए। तो ये मिसकॉन्सेप्ट भी दो तरह का है, एक समझ का भी है एक अनुभव का भी है, और दोनों के लिए सुलता ज्ञान अपना अपना चाहिए। लाठी के सामने लाठी से लड़ो और तलवार के सामने तलवार से लड़ो, बंदूक के सामने बंदूक से लड़ो। बंदूक के सामने लाठी काम में नहीं आती, वो मार खा जाएगा। ऐसे अनुभव उल्टा है और समझ हमारी सही है, वो काम में नहीं आता, क्योंकि वो तो सुन करके पढ़ करके उल्टी समझ को तो सूटी समझ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में वो बात विस्तार से आई है कि कहाँ कहाँ गैर समझ होती है, कैसे कैसे होती है, समझाते हैं और समझते भी है समझने वाले, फिर भी समझने वाले को परिणमन नहीं होता है, इसका क्या कारण? अनुभव ज्ञान नहीं है। इसलिए मुमुक्षु की प्रारंभ की भूमिका से ही अनुभव ज्ञान की प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए। जैसे हम पहला स्टेज ही वेदना का लेते हैं, तो वेदना है उसमें विचार ज्यादा नहीं चलता, लेकिन वेदन ज्यादा चलता है, तीव्रता वेदन की है, विचार होता है, चिंतना होती है, चिंता होती है, उसमें से वेदन में आता है। लेकिन विचार से अनुभव है, वेदन है, ये एक कदम आगे है, वन स्टेप फर्दर है, वो एक कदम आगे है। जो विचार करता है और अनुभव में नहीं आता है उसको कभी आत्मानुभव नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग अनुभूति प्रधान है। 12 अंग में अनुभूति ही विहित है ऐसा शास्त्र में कहते हैं। कलस्टिका नहीं होगी, कलस्टिका जो है ना, अब तो दिन कितने रहे बना, थोड़ा रेफरेंस बुक रख लेते हैं, उसमें 13 नंबर का जो कलश है, तेरह नंबर का जो कलश है उसमें लिया है कि 12 अंक का ज्ञान छोड़ो, 12 अंक का जो ज्ञान है वो तो विकल्प रूप है। क्या बोले, 12 अंक का ज्ञान तो ज्ञान का समुद्र जैसा लगे, इतना तगड़ा क्षोभ सम हो तब तो 12 अंक का ज्ञान होता है, तो उसका कीमत निकाल दिया, आगम ज्ञान का तो वैल्यू निकाल दिया, जबकि 12 अंक का ज्ञान सम्यक दर्शन दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि को तो 11 अंक 9 पूर्व तक के होता है, बाकी के 5 पूर्व का ज्ञान सम्यक दर्शन वाले को ही होता है, फिर भी उसका कीमत निकाल दिया क्योंकि उघाड़ ज्ञान है, उपयोग शास्त्र में जाता है, यानी परसन्मुख होता है उस वक्त उपयोग, उसका कोई कीमत नहीं है अध्यात्म में। तो राजमल जी ने क्या लिखा कि 12 अंक का ज्ञान तो विकल्प रूप है, अनुभूति रूप जो अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान है वही ज्ञान है, और 12 अंग में उसका ही विधान है। इतनी अनुभूति की प्रधानता दिया है, जो 12 अंग का सार है, जो भी जिस्ट है इसका क्रीम है वो तो अनुभूति है। जब संसार से छूटने का यानी निर्दोष होने का प्रधान उपाय स्वानुभव है, आत्मानुभव है, आत्मज्ञान है, सर्व क्लेश और सर्व दुख से मुक्त होने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है और वो अनुभव ज्ञान है, तो हम तो हमको शुरू से ही अनुभव ज्ञान वाली प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए मनुष्य की भूमिका में, तभी हमको अनुभव ज्ञान होएगा। इसलिए ये जो वेदना है यहाँ से लेकर के निजावलोकन है, वेद ज्ञान है, सब वेदन ज्ञान का, वेदन का ही प्रैक्टिकल साइड से प्रैक्टिस है, इसलिए इसका फल अनुभव आता है, वरना अनुभव फल नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ते जाओगे, शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, विद्वान हो जाओगे, पंडित हो जाओगे, ज्ञानी नहीं हो सकते। विद्वान होना एक बात है, ज्ञानी होना दूसरी बात है। ज्ञानी विद्वान होते भी है, नहीं भी होते हैं, फिर भी ज्ञानी ज्ञानी है, वो संसार फिर जाएगा। विद्वान कितना ही बड़ा विद्वान हो, संसार नहीं तिर सकता, इसका ज्ञान एक भव तक रहने वाला है, दूसरे भव में जाएगा ये ज्ञान छूट जाएगा, अंग पूर्व का ज्ञान हो छूट जाएगा, अगले भव में मैंने क्या ज्ञान लिया उसको किसी को मालूम, स्मरण नहीं आएगा, भूल जाएगा, और अनुभूति रहेगी तो चालू रहेगा, चाहे कहीं भी जाए वो चालू रहने वाला ज्ञान है। एक सूक्ष्म ज्ञान छूट जाता है किसी को, तो इस भाव में छूट जाता है, हम पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज में छूट गया कि नहीं छूट गया, छूट जाता है। क्योंकि उसमें उतना बलवानपना है ही नहीं, कमजोर है वो। यहाँ वेदन ज्ञान क्या भाई, वो जो स्पष्ट ज्ञान है, ऐसा जो स्पष्ट ज्ञान, वेदन ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अनुभव पना, ये जो किसी में भी होता है तो यह तो यह ये जीव पद में है, यानी जीव के स्वरूप में है, ये जीव में है। जीव के बिना कोई अनुभव करने वाला नहीं है। ये रोबोट बनाया ने, कंप्यूटर बनाया, वेदन नहीं है उसमें। अपन वो कार्डियोग्राम लेते हैं ना, स्ट्रेस कार्डियोग्राम, तो कंप्यूटर में सब चीज आती है, रीडिंग आता है, लेकिन एंजिना के लिए वो पूछता है पेशेंट को, डॉक्टर, कि आपको कुछ होता है, क्योंकि वो वेदन है, वो कंप्यूटर नहीं बताता। हमारा अनुभव से पता चला, हम कभी कभी स्ट्रेस देते हैं तो हम बोले कि हमको क्यों पूछता है, जब इनके पास इतने साधन हैं, वेदन नापने का कोई साधन नहीं है। ये अनुभव ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है वो। अथवा यही जिसका लक्षण होता है, वेदन करने का जिसका लक्षण होता है, यह पदार्थ जीव होता है, यही तीर्थंकर आदि का अनुभव है। तीर्थंकर आदि का कहना है, ऐसा नहीं लिखा इधर। एक एक शब्द में कितना उपयोग है कृपालु देव का, एक एक बात लिखते हैं इसके पीछे। अनुभव की कलम चली है, विचार के कलम नहीं चली है, अनुभव की कलम चली है, बात ऐसी लिखते हैं। यही तीर्थंकर आदि सभी अनुभवी पुरुषों का यही अनुभव है, तो उतनी बात में एक स्पष्टीकरण और है कि ये जो दृष्टांत है वो वास्तविक ऐसा अनुभव कोई जीव नहीं कर सकता। खा वो जो मीठा फीका खट्टा ये जो है वो अनुभव नहीं होता है, वो जानने का होता है। ठंडी गर्मी अनुभव नहीं होता है, जानने का होता है। ऐसे वेदना की शाता अशाता की प्रकृति अनुभव नहीं होता है, जानने का होता है, जिसमें पीड़ा होती है। और मानसिक सुख दुख वो भी प्रकृति का स्वाद है, उसका ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता है। और है तो उसका अनुभव कैसे होगा? तो खट्टा मीठा तो छोड़ो, ठंडी गर्मी को तो छोड़ो, अरे साता असाता को भी छोड़ो, सुख दुख का जो अनुभव है वो भी प्रकृति का स्वाद है। जीव उसको जानता है, अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव किसका होता है? एक अपने ज्ञान वेदना का, निर्विकल्प ज्ञान वेदन ही अनुभव में आता है, जिसके साथ आत्मिक सुख शांति जुड़ी हुई है, अभेद है, अलग नहीं है, उसका ही अनुभव होता है। जीव को दूसरे का अनुभव हुआ, ये गलत अनुभव, मिसकॉन्सेप्ट है। अनुभव पद्धति से, अवलोकन से अगर ये बात समझ में आ गई भेद ज्ञान से, आत्मा अनुभव हो गया, ज्ञान का ज्ञान वेदन हो गया, स्वसंवेदन ज्ञान हो गया, वही आत्मज्ञान है। आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति, जो आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है, और ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है। स्वयं के रूप से अपना ज्ञान का वेदन होना वही आत्मा है, और वही आत्मा का अनुभव है, वही आत्मज्ञान है, और वही जन्म मरण से छूटने का मुक्ति का ज्ञान है। यही मुक्ति का मार्ग है, सारे संसार को तैरने का, सभी दुखों से छूटने का यही मार्ग है। ये सरल कर दिया ज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने इस विषय को सरल कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट में अनुभव से हुआ ना, मुझे ठंड लगी, ये तो मिसकॉन्सेप्ट तो अनुभव से किया ना, तो ये मिसकॉन्सेप्ट सही अनुभव से ही छूटेगा। विचार से आपने समझ लिया, हमने बताया, ज्ञानी ने बताया, आपने पढ़ा सुना, और आपको विचार में वो बात सही समझ में आ गई कि वास्तव में जो परमाणु ठंडी के वातावरण में होते हैं वो तो ठंड का तो एटमॉस्फियर होता है, ज्ञान कभी ठंडा होता नहीं, न ज्ञान को कोई टेम्परेचर आता है ठंडी गर्मी का। विचार तक समझ में आता है, लेकिन हमारी भूल तो ठंड के अनुभव में, हम मुझे ठंड लगती है ऐसा मिसकॉन्सेप्ट है। उस वक्त तो मुझे ज्ञान का अनुभव होता है, ठंड का तो ज्ञान होता है, जानने का होता है, अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव ज्ञान होए तब तो वो मिसकॉन्सेप्ट मिटेगा। हाँ, अनुभव के विषय में अनुभव का ही मिसकॉन्सेप्ट है, वो सही अनुभव से छूटता है, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई इलाज नहीं है दूसरा को। हाँ, तो सही समझ आ गई, फिर भी हम हमको अनुभव गलत हुआ, इसका क्या? इसलिए दृष्टांत वो स्थूल दिया कि देह और आत्मा भिन्न है, ऐसा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि तो मिटती नहीं, क्योंकि देह को अपने रूप में अनुभव करता है साता असाता के रूप में। देह के माध्यम से क्या करता है कि साता असाता वो देह की पर्याय है, शरीर के परमाणु की पर्याय है। असाता आती है तो मुझे वेदना हुई, मुझे पीड़ा हुई, ऐसा अनुभव करता है। तो देह और आत्मा भिन्न है वो समझते रही नहीं, यानी समझ से अनुभव विरुद्ध है। समझ है देह आत्मा भिन्न के, और अनुभव हुआ पीड़ा का, मुझे हुआ देह की पीड़ा मुझे हुई, तो ये वेदन ज्ञान और ये समझ वाले ज्ञान दोनों विरुद्ध हो गया। तो हमने कभी इस विरुद्धता का विचार किया अनुभव में आने के लिए, कि मेरा समझ वाला ज्ञान और अनुभव वाला ज्ञान में बिल्कुल पोजीशन बनती है, इतना बड़ा अंतर कैसे, ये अंतर कैसे, और इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर इसका जिज्ञासा पूर्वक प्रयास नहीं हुआ तो ये अंतर मिटने वाला नहीं है, समझ अपनी जगह रहेगी, अनुभव अपनी जगह रहेगा, काम उल्टा होता रहेगा, अनुभव ज्ञान में दुख भोगता रहेगा। पर सुख दुख तो अनुभव का विषय है, समझ का विषय थोड़ी ना है। ये जो सुख और दुख है, हमारा प्रयोजन क्या है, सभी का प्रयोजन क्या है, कि दुख किंचित मात्र नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, और संपूर्ण सुख हमेश के लिए हमें चाहिए, ये हमारा प्रयोजन है। तो ये समझ का विषय है या अनुभव का विषय, ये बताइए आप। अनुभव का विषय है, सुख दुख तो अनुभव में आता है, ठीक है, लेकिन सुख दुख जो है, जो सुख है और दुख है, वो अनुभव की चीज है या समझ की चीज है? तो अनुभव की चीज है। सुख और दुख हम व्याख्या कर लें कि निराकुलता लक्षण सुख है, दुख की व्याख्या करें, आकुलता लक्षण दुख है, तो क्या हमको सुख दुख का अनुभव हो गया? नहीं हुआ। ज्ञान तो हुआ, समझ वाला ज्ञान सुख दुख का भी हुआ है, लेकिन चीज अनुभव की है, समझ की चीज है नहीं। जो चीज खाने की है, दृष्टांत इसलिए खाने का दिया है कि आप काले जामुन को दिखेंगे तो जामुन काला है, इसलिए उसका स्वाद कोई काला होता है क्या, या बुरा होता है क्या, या मीठा नहीं होता है क्या? काले जामुन भी मीठे होते हैं। और आम है वो पीली है इसलिए मीठी थोड़ी ना है, पीली भी खट्टी होती है। और नीली है तो खट्टी है, ऐसी भी बात नहीं है, नीली है और मीठी भी होती है। तो ये स्वाद की चीज देखने से तो पता नहीं चलता, वो तो स्वाद लेने से ही पता चलता है। दृष्टांत इसलिए लिया है, गहराई है इसमें दृष्टांत में भी। ऐसे सुख दुख जो आत्मा का परिणमन है वो तो वेदन में आता है, तो उसकी समझ से काम नहीं होगा, उसका वेदन को ठीक करना पड़ेगा, समझ ठीक करने से काम नहीं होगा। ये सुनने में हम समझ ठीक करते हैं, वेदन ठीक करने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज काम में नहीं आता, ये बात है। इसलिए दृष्टांत जो है वो प्रैक्टिकल साइड का दिया है कि हमारा अनुभव ज्ञान में जहां जहां गलती हो रही है, जड़ चैतन्य की भिन्नता समझना बहुत आसान है, इसलिए कि जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं है और सुख भी नहीं है, और चैतन्य पदार्थ ज्ञान और सुख का अनुभव करता है, इसलिए वो तद्दन विरुद्ध पदार्थ है, विजातीय पदार्थ है, फिर भी सुख के लिए हम जड़ के पीछे लगे हैं। जड़ में सुख नहीं, वो बात समझ में आने पर भी हम सुख के लिए तो जड़ के पीछे जाते हैं, हमारा परिणाम। तो ये अनुभव का मिसकॉन्सेप्ट है। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका में समझ से और अनुभव से जहां जहां मिसकॉन्सेप्ट होता है उसको बदलना है, ये त्याग की भूमिका नहीं है। मुमुक्षु को ये जरूरी नहीं है कि घर छोड़ दे, दुकान छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दे, जंगल में चले जाए, पाथरी में बैठ जाए, वो कोई जरूरी नहीं है। अपना कौन
घर पर पीछे जाओ
नहीं देख सकता कोई, यहां पर जो बात लिया है कि आत्मा है उसमें वेदकता नाम का गुण है, और स्वयं का ज्ञान का ही वेदन करना यह इसका स्वभाव धर्म है। ज्ञान के वेदन को उल्लंघन करके, अतिक्रम बलात्कार करके उस पर हम अन्य पदार्थ के वेदन में अपना परिणमन को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे ठंड लगी, मुझे खरा खटा लगा, वो लगा, ये विभाव धर्म है वेदन का। ज्ञान का वेदन करना वो स्वभाव धर्म है, और अन्य पदार्थ का वेदन करना वो विभाव धर्म है। विभाव दुख का उत्पादक होता है, स्वभाव सुख का उत्पादक है, ये सीधी सादी बात है। यहां तो कृपालु देव कहते हैं कि ये तीर्थंकर आदि का अनुभव है, हम जो कहते हैं वो तीर्थंकर आदि का अनुभव है, उसी को हम कह रहे हैं। अभी आखिर का चैतन्य लक्षण को बताते हैं कि स्पष्ट प्रकाश पणों अनंत अनंत कोटि तेजस्वी दीपक, सब में अनंत लेना, अनंत अनंत मणि हो, अनंत चंद्र हो, अनंत सूर्य आदि, उसकी जो कांति माने प्रकाश, जिसके प्रकाश बिना प्रकाशित होने का सवाल नहीं है, मैंने इसका अस्तित्व जाना नहीं जाता। ये तो पुद्गल के प्रकाश है, जड़ परमाणु के प्रकाश है। आत्मा चैतन्य प्रकाशी पदार्थ है। प्रकाश शब्द दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो धूप वगैरह आता है वो पुद्गल की पर्याय है, यहाँ जो परमाणु है वो धूप का पर्याय को धारण कर लेता है, अंधेरा होता है तो अंधेरा के पर्याय को धारण करता है। यहाँ के परमाणु वही परमाणु है, वो के वो परमाणु तेजस्वी होते हैं और अंधेरा भी वही परमाणु धारण करता है, वो परमाणु की पर्याय है। चैतन्य प्रकाश है वो तो अनुभव है, वो तो चैतन्य का अनुभव है, वो चैतन्य का प्रकाश है। इसलिए आचार्यों ने स्वसंवेदन को ही प्रकाश शक्ति का परिणमन बोला है। जो आत्मा में आत्मानुभव होता है वो प्रकाश शक्ति का परिणमन बोला है। तो कहते हैं कि जिसके प्रकाश बिना, आत्मा के चैतन्य के प्रकाश बिना, जड़ पदार्थ में उतना प्रकाश है वो कौन जानेगा, कौन कहेगा, इसका अस्तित्व को कौन जाहिर करेगा। जाहिर करते हैं कि सूर्य में प्रकाश है, ये मणि में प्रकाश है, दीपक प्रकाशमान है, उसकी जाहिरात कौन करता है? चैतन्य प्रकाश वाला कोई पदार्थ है वही उसको प्रसिद्ध करता है। जाहिर मैंने प्रसिद्ध करना, कौन प्रसिद्ध करता है कि पुद्गल परमाणु के प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला, प्रसिद्ध करने वाला एक चैतन्य पदार्थ है। कितने भी भौतिक पदार्थों की खोज हुई है साइंस में, मॉडर्न साइंस में जो भी हुई है, किसने किया, क्या किसने, कि उसके अरेंजमेंट करने वाला कोई चैतन्य है, चाहे मिसाइल हो, रॉकेट हो, रोबोट हो, या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, इसके पीछे दिमाग जो होता है, भेजा होता है, वो कोई चैतन्य का होता है, वो पुद्गल का मुर्दे का नहीं होता है, वो सजीवन मूर्ति का होता है। कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कि हर चीज, एक पूरी गाड़ी असेंबल होती है, ऑटोमेटिक होती है, उसका बोल्ट नट ये फिटिंग विटिंग विटिंग सब मशीन करता है, और कंप्यूटर से बोल्ट है से बोल्ट उठाता है मशीन, नट है वहाँ से नट उठाता है, सब मशीन ही उठा लेता है और मशीन ही फिट कर देता है। लेकिन ये सब अरेंजमेंट किसने किया? ऐसे मशीन को अरेंजमेंट किसने किया? हमको भौतिक पदार्थ की वैल्यू, कीमत बहुत भाषित होती है, लेकिन इन सबको प्रकाशित करने वाला, प्रसिद्ध करने वाला, अरेंज करने वाला जो ज्ञान है, उसका मूल्यांकन हमने कभी नहीं किया। और ये मूल्यांकन करने में भी हमारी जो गैर समझ है, गलती हुई है, ये भी हमारे अनेक प्रकार के दुख का और आपत्ति का कारण बना है। सबसे ज्यादा ज्ञान का मूल्यांकन होना चाहिए, और जब से ज्ञान का मूल्य आएगा तब से ज्ञान की जतना होगी। जिसका मूल्य होता है उसका जतन करते हैं कि नहीं करते हैं, हैं? मूल्यवान पदार्थ का जतन करते हैं। ये पैर लूछने का जो होता है वो पड़ा रहता है वहां, लेकिन हीरे का नेकलेस वहां थोड़ा रहेगा वो तो तिजोरी में रहेगा ना, वो पैर लूछने की जगह पर थोड़ा रहेगा कोई रखेगा, क्योंकि वो मूल्यवान पदार्थ है। ऐसे ज्ञान का मूल्य अगर हम करेंगे तो ज्ञान वृद्धि पामता पामता केवल ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान की यत्न करने से वो फायदा है, तो उसके प्रिजर्वेटिव फैक्टर्स कौन है ये सब बात फिर ये सत्संग में इसकी चर्चा होती है, हाउ टू प्रिजर्व, उसकी रक्षा सुरक्षा कैसे करना, उसको वर्धमान कैसे करना, बढ़ाना कैसे, तो केवल ज्ञान हो जाएगा और साथ साथ सुख का प्रारंभ होगा। आत्मज्ञान होने से आत्मिक सुख शांति के चालू हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते परमानंद और परम सुख की प्राप्ति हमेश के लिए हो जाएगी, जो हम चाहते हैं कि हमको हमेश के लिए पूरा सुख चाहिए वो मिल जाएगा। इतना बड़ा अचीवमेंट है इस मार्ग में, इसके लिए अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो बात खत्म हो गई। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम किसके पीछे लगेंगे, अचीवमेंट छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फल है इसका। अर्थात यह सब अपने अपने को जनाने के, जानने और जनाने के योग्य है ही नहीं। ये मणि नहीं जानता, रत्न है वो नहीं जानता कि मेरे में प्रकाश है, न जानने का काम कर सकता है न जनाने का भी काम कर सकता है। जो पदार्थ के प्रकाश में चैतन्य पने से ये पदार्थ जानने जाना जाता है, यह पदार्थ प्रकाश को प्राप्त होता है, स्पष्ट भाषित होता है, उसका एग्जिस्टेंस मालूम पड़ता है। यह पदार्थ जो कोई है यह जीव है, बिना जीव ये मालूम पड़ता नहीं। अर्थात यह लक्षण प्रकट रूप से स्पष्ट प्रकाशमान, स्पष्ट प्रकाशमान है हमारा जीव है, वो जागता जीव है, स्पष्ट प्रकाशमान है, जागृत जीव है, हम है। हमारे मौजूदगी को कोई गिनते नहीं है तो उनको नेग्लिजेंस का दुख होता है, तो देखो हम इधर बैठे हैं हमारे सामने भी नहीं देखा, कम कृपया एक दफे हमारे सामने तो देख लो ऐसा कहेंगे, इतना निग्लेक्ट क्यों करते हो ऐसा कहेंगे। इतना जागृत है अपने अस्तित्व के लिए, स्पष्ट प्रकाशमान, ऐसा निराबाध प्रकाश्यमान चैतन्य। क्या शब्द प्रयोग किया, निराबाध प्रकाश्यमान चैतन्य। यह जीव का प्रकट लक्षण जीव का है, कैसे जानाता जाता है, जीव के प्रति उपयोग वालने से प्रकट जानने में आता है। देखो कार्य पद्धति साथ में लेते हैं, प्रैक्टिकल साइड साथ में देते हैं, कि अगर ऐसे जीव के स्वरूप को जानना हो तो जीव के प्रति उपयोग को ले जाओ, जो उपयोग पुद्गल के प्रति जा रहा है उसको अंतर्मुख होकर के उपयोग को उधर ले जाओ, यानी ज्ञान विशेष को ज्ञान सामान्य रूप जो वेदन है वहां ले जाओ, उपयोग अंतर्मुख हो जाएगा, वो प्रकट जीव देखने में आएगा, प्रकट जीव अनुभव गोचर हो जाएगा। और इसी के लिए सब लंबी चौड़ी बात है, उपयोग को अंतर्मुख करने के लिए ये सब लंबी चौड़ी बात है। ज्ञानियों ने कहा है क्योंकि अलग अलग जीव अलग अलग योग्यता में खड़े हैं, तो उनको विविध विविध प्रकार से समझाया जाता है। और जिसकी होनहार अच्छी है, यानी भविष्य जिसका उज्जवल है, अच्छा है, उनको इसमें रस आता है, उसकी समझ आती है और उसको अंगीकार करके निहाल हो जाता है। क्या हो जाता है? निहाल हो जाता है, सर्व दुख से मुक्त हो जाता है। चित्त को चेतना में लीन करना, वही बात है, अपनी चेतना, चेतना मैंने ज्ञान वेदना उसमें उपयोग को ले जाना। ये जो लक्षण कहें, ये बार बार फिर से विचार करके जीव निराबाध रूप से जाना जाता है, कि जिसके जानने से जीव जाना है, यह लक्षण इस प्रकार से तीर्थंकर आदि ने कहा है। तीर्थंकर आदि हमारे जो पूर्वज हो गए हैं, महान पुरुष हो गए हैं, उन्होंने ये बात जानी है, अनुभव गोचर किया है और कही है, और उसका बार बार विचार करके और प्रैक्टिस करके समझ को और अनुभव को ठीक करना चाहिए, यथार्थ करना चाहिए। यही इसमें ही श्रेय है जीव का, इसमें ही जीव का मंगल है, वही मंगलकारी है।
Oh, boy.